आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुनियादी ढांचे में काया पलट करते हुए साल 2047 तक तरक्कियाफ्ता मुल्क बनने का भारत का अज़्म आलमी मुबाहिसों का मरकजी मौजू है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल मुल्क की पहली मेड इन इंडिया सेमी कंडक्टर चिप का आगाज हो जाएगा। भारत के इंतखाबी कमीशन के मुताबिक बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी के अमल में अब तक तकरीबन 95% राय दहिंदान का अहाता कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में 6 माओनवाज मारे गए। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरला में कल तक शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। कुश्ती में बुदापेस्ट में पोलियक एमरे एंड वर्गा जेनोस मेमोरियल टूर्नामेंट में भारत के अंतिम पांघल और हर्षिता ने सोने के तमगे जीते हैं। और शतरंज में जॉर्जिया के बतूमी में जारी खवातीन के फीडे आलमी कप में सभी 4 भारतीय खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साल 2047 तक तरक्कियाफ्ता मुल्क बनने का भारत का अज़्म, जो कि बुनियादी ढांचे में काया पलट करने से तहरीक पा रहा है, आलमी मुबाहिसों का मरकजी मौजू है। जनाब मोदी कल मगरबी बंगाल के दुर्गापुर में 5,400 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने, इफ्तिताह करने और उन्हें कौम के नाम वक्फ करने के मौके पर खिताब कर रहे थे। इन प्रोजेक्टों से खित्ते के बुनियादी ढांचे और माशी तरक्की को इस्तेहकाम मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज दुनिया भर में तरक्कियाफ्ता मुल्क बनने के भारत के अज़्म पर ही बात हो रही है।
भारत की फैक्ट्रियां हो या हमारे खेत खलियान, हर जगह एक ही निश्चय के साथ काम हो रहा है, हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। हमारा रास्ता है विकास से सशक्तिकरण, रोजगार से आत्मनिर्भरता और संवेदनशीलता से सुशासन। इन्हीं मूल्यों पर चलते हुए हम पश्चिम बंगाल को भारत की विकास यात्रा का मजबूत इंजन बना करके रहेंगे।
जनाब मोदी ने उन्हें भारत में जारी इनकलाबी तब्दीलियों से मंसूब किया, जो कि तरक्याफ्ता भारत की बुनियाद रख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बुनियादी ढांचे के समाजी, मादी और डिजिटल पहलुओं का हवाला देते हुए पिछली दहाई के दौरान हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया।
पूरी दुनिया में विकसित भारत के संकल्प की चर्चा है, इसके पीछे भारत में दिख रहे वो बदलाव है जिन पर विकसित भारत की इमारत का निर्माण हो रहा है। इन बदलावों का एक बड़ा पहलू भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो इसमें सोशल, फिजिकल और डिजिटल हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 4 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर, करोड़ों टॉयलेट, 12 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन, हजारों किलोमीटर की नई सड़कें, नए हाईवे, नई रेल लाइन, छोटे छोटे शहरों में बने एयरपोर्ट, गांव गांव घर घर पहुंचा इंटरनेट, ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ पश्चिम बंगाल सहित देश के हर राज्य को मिल रहा।
हुकूमत ने पीर के रोज से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले कल सभी सियासी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को हस्बे मामूल चलाने के लिए सभी सियासी जमातों से ताउन की गुजारिश करेगी। मॉनसून इजलास 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इजलास के दौरान कई अहम बिलों को बहस और मंजूर किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि स्वदेशी तर्ज पर तैयार मुल्क की पहली सेमीकंडक्टर चिप का इस साल आगाज हो जाएगा। हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी की 85वीं यौम तासीस तकरीबात से खिताब करते हुए कल वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत दुनिया के अहम तरीन सेमीकंडक्टर ममालिक में से एक बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले ही 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दे दी है और उनकी तामीर का काम भी जारी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि इस साल मुल्क को अपनी पहली मेड इन इंडिया चिप मिलेगी।
टुडे सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चिप्स आर डिजाइंड हियर इन हैदराबाद, इन बेंगलुरु, इन पुणे, इन गुड़गांव, इन नोएडा, इन चेन्नई, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। We have already approved 6 semiconductor plants. Their construction is going on and we'll have the first made in India chip in this year 2025.
जनाब वैष्णव ने यह भी कहा कि इंडिया एआई मिशन के हिस्से के तौर पर मुफ्त डेटा सेट्स और दूसरी चीजें अपलोड की जा रही हैं। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि 10 लाख लोगों को मस्नूई जहानत एआई के इस्तेमाल की तरबियत दी जा रही है। जनाब वैष्णव के मुताबिक साल 2047 तक भारत दुनिया की सरफहरिस्त दो मईशतों में से एक होगा। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव जो कि तेलंगाना के दुरोजा दौरे पर हैं, आज सुबह आईआईटी हैदराबाद की तकसीम इस्नात तकरीब से खिताब करेंगे। वजीर मौसूफ दोपहर को काजीपेट में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से तैयार किए जा रहे रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के काम की पेशरफ्त का भी जायजा लेंगे। रेलवे के वजीर हैदराबाद से जोधपुर के लिए शुरू की जा रही नई ट्रेन को आज शाम काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि बिहार में जारी खसूसी जाम नजरसानी मुहिम एसआईआर के तहत अब तक 7,48,00,000 से ज्यादा जाती मालूमात से मुतालिक इनमरेशन फॉर्म जमा कर लिए गए हैं जो कि जाती मालूमात के मजमुई फॉर्म का तकरीबन 95% है। इंतखाबी इदारे ने कहा कि अब सिर्फ 5% राय दहिंदगान के जाती मालूमात के फॉर्म जमा होना बाकी हैं जिनमें से अक्सरियत ने आने वाले दिनों में दस्तावेजात के साथ इन फॉर्म्स को जमा करने के लिए मजीद वक्त मांगा है। इंतखाबी कमीशन ने मजीद कहा कि उसने पाया कि 1.6% राय दहिंदगान की मौत हो चुकी है, 2.3% मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल हो गए हैं और 4.6% राय दहिंदगान की जानिब से दिए गए पते पर उन्हें नहीं पाया गया। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि वह इस बात को यकीनी बना रहा है कि कोई भी अहल वोटर छूट ना जाए और बाकी सभी वोटर्स भी अपने जाती मालूमात से मुतालिक फॉर्म पुर करें। कमीशन के मुताबिक 7,89,00,000 से ज्यादा जाती मालूमात के फॉर्म प्रिंट किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में कल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुई मुठभेड़ में 6 माओनवाज मारे गए। बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज ने बताया कि अबू जुमाड़ इलाके के जंगलों में कल दोपहर उस वक्त लड़ाई छिड़ गई जब इलाके में शोरिश पसंदों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला मिलने पर हिफाजती दस्तों ने माओनवाज मुखालिफ कार्रवाई शुरू की। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में आज उत्तराखंड निवेश उत्सव में शिरकत करेंगे। इस तकरीब का मकसद सनअती सरमायाकारी के शोबे में रियासत की पेशरफ्त की नुमाइश करना है। देहरादून में साल 2023 में मुनाकिद ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद 1,00,000 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत के सरमायाकारी माहिदों पर पहले ही अमल दरामद जारी है। इस दौरान इन हसूलियाबियों को उजागर करने और मुस्तकबिल के सरमायाकारी इम्कान तलाश करने के लिए निवेश उत्सव मुनाकिद किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस तारीखी तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे जबकि वजीर आला पुष्कर सिंह धामी तकरीब की सदारत करेंगे। ये प्रोग्राम रुद्रपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनाकिद हो रहा है जिसमें रियासत में कायम मुख्तलिफ नई सनअतों के नुमाइंदे और मोअज्ज़ज़ अफराद शिरकत करेंगे। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कल तकरीब के मकाम का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि साल 2023 के इन्वेस्टर्स समिट के दौरान रियासती हुकूमत को सनअती ग्रुपों और कारोबारी इदारों की जानिब से बेशकीमती मशवरे मिले जिनकी बिना पर हुकूमत ने 25 नई पॉलिसियां और मुतारिफ कराई और कई कवानीन को आसान बनाया। जनाब धामी के मुताबिक इनसे सरमायाकारी के कई बड़े माहदे मुमकिन हो सके।
25 से अधिक हमने नई नीतियां बनाई जो हमारी पहले पॉलिसी चल रही थी उन पॉलिसियों को कुछ को हमने सशक्तिकरण भी किया जिसके कारण से उम्मीद से कहीं ज्यादा निवेशकों के साथ हमारे करार हुए कि जो निवेशक हमारे साथ करार करने आए हैं वो यहाँ पर अपना उद्योग और निवेश दोनों ही स्थापित करें। और आज हमें प्रसन्नता है कि आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी उपस्थिति में जो 3 चरणों में हमारा 1,00,000 करोड़ से अधिक की जो ग्राउंडिंग हो गई है का हम एक उत्सव कर रहे हैं।
जनाब धामी के मुताबिक रियासत में 1,00,000 करोड़ रुपये मालियत के प्रोजेक्ट पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। देहरादून से साक्षी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
मुनशियात की लानत के खिलाफ इज्तिमाई कौमी अज़्म को तकवियत देने के मकसद के साथ आज वाराणसी में नौजवानों की रूहानी चोटी कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा। दो रोजा तकरीब जो विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा के मौजू पर मरकूज है इसका इनेकाद नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत के जेर एहतमाम किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
नौजवानों की रूहानी चोटी कॉन्फ्रेंस में पूरे मुल्क की 100 रूहानी और समाजी सकाफती तंजीमों के 500 से ज्यादा नौजवान मंदूबीन यकजा होंगे। اس دو روزہ چوٹی کانفرنس میں ہماچل پردیش کے گورنر شیو پرتاپ شکلا، عمر داخلہ کے مرکزی وزیر مملکت نتیانند رائے اور نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر وزیر مملکت نکھل کھڑسے نیز کئی دیگر ریاستی عزرا بھی شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس کا مقصد منشیات کی لعنت کے خلاف نوجوانوں میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ کانفرنس 20 جولائی کو کاشی اعلامیہ کے جاری کیے جانے کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی۔ یہ دستاویز منشیات سے پاک بھارت کی تشکیل کے لیے ایک جامع حکمت عملی پیش کرے گا۔ آکاشوانی سے اوم اوستھی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت پابندیاں عائد کرنے کے کسی بھی طرح کے یک طرفہ اقدامات سے اتفاق نہیں رکھتا۔ حالیہ یورپی یونین پابندیوں سے متعلق کل پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت ایک ذمہ دار ملک ہے اور وہ اپنی قانونی ذمہ داریوں کے تئیں پوری طرح عہد بستہ ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت اپنے شہریوں کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے توانائی کی یقینی فراہمی کی گنجائش کو سب سے اہم ذمہ داری سمجھتا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان جیسوال نے زور دیا کہ جب بات توانائی کی تجارت کی ہوتی ہے تو اس میں کسی طرح کے دوہرے معیار نہیں ہونے چاہیے۔ بنگلہ دیش حکام نے 34 بھارتی ماہی گیروں کو ان کی 2 بھارتی ماہی گیری کشتیوں سمیت حراست میں لے لیا ہے۔ یہ کارروائی مونگلا کے قریب بین الاقوامی بحری حدود مبینہ طور پر پار کرنے اور بنگلہ دیشی آبی حدود میں ماہی گیری کرنے کی بنا پر کی گئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ڈالرز کے حساب سے کرپٹو کرنسی کے سٹیبل کوائنز کے لیے انضباطی نظام کی تشکیل کے مقصد سے ایک قانون پر دستخط کیے ہیں۔ بل جسے جینیس ایکٹ کا نام دیا گیا ہے، اس ایوان میں دونوں پارٹیوں کی طرف سے مضبوط حمایت حاصل ہوئی ہے۔ یہ اس قانون کے تحت بڑے مالیاتی ادارے امریکی ڈالر کی مدد والے اپنے خود کے سٹیبل کوائنز کو جاری کر سکیں گے، جو کرپٹو فائنانس میں امریکی قیادت کی جانب سے ایک بڑا قدم ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک کیرالہ میں شدید ترین بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ راجستھان، مدھیہ پردیش، آسام، تمل ناڈو اور کرناٹک کے مختلف حصوں میں آج کے لیے شدید ترین بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، اتر پردیش، جموں کشمیر، پنجاب اور ہریانہ کے مختلف حصوں میں 24 جولائی تک موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کود سے۔ ہنگری کے شہر بوداپست میں جاری پولیاک ایمرے اینڈ ورگا جنوس میموریل 2025 ٹورنامنٹ میں کل بھارتی خواتین پہلوانوں نے سونے کے 2، چاندی اور کانسے کا ایک ایک تمغہ سمیت کل 4 تمغے جیتے۔ 53 کلوگرام زمرے کے فائنل مقابلے میں بھارتی پہلوان انتم پانگھل نے روس کی نتالیا ملیشیوا کو 7-4 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ 72 کلوگرام کے زمرے میں ہرشیتا نے قزاقستان کی 4 مرتبہ کی ایشیائی چیمپئن کو 10-0 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ ادھر شطرنج کے فیڈے عالمی خواتین کپ میں بھارت کی مایہ ناز کھلاڑی کونیرو ہمپی، ڈی ہریکا، آر ویشالی اور انٹرنیشنل ماسٹر دیویا دیشمکھ کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئی ہیں۔ اس ٹورنامنٹ میں 4 کھلاڑیوں کے ساتھ آخری 8 مرحلے میں پہنچنے والا پہلا ملک بن کر بھارت نے تاریخ رقم کی ہے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کے بہار کے موتیہاری اور مغربی بنگال کے درگاپور دورے کی خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ اس موقع پر جناب مودی نے بہار میں 7,200 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا اور کہا کہ جب بہار ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا، جبکہ مغربی بنگال کے ساتھی شہر درگاپور میں انہوں نے 5,400 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا اور پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے مغربی بنگال کے لیے بڑے خواب دیکھے ہیں۔ امریکہ نے پہلگام حملے کی ذمہ دار تنظیم ٹی آر ایف کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ بھارت نے امریکہ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ ای ڈی نے چھتیس گڑھ کے سابق وزیر اعلی بھوپیش بگھیل کے بیٹے چیتنیا کو شراب گھپلے سے منسلک منی لانڈرنگ معاملے میں گرفتار کیا۔ سپریم کورٹ کا زمین کے بدلے نوکری معاملے میں راشٹریہ جنتا دل کے سربراہ لالو پرساد یادو کی درخواست پر سماعت سے انکار، ان خبروں کو آج کے بیشتر اخبارات نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔
آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بنیادی ڈھانچے میں کایا پلٹ کرتے ہوئے سال 2047 تک ترقی یافتہ ملک بننے کا بھارت کا عزم عالمی مباحثوں کا مرکزی موضوع ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ اس سال ملک کی پہلی میڈ ان انڈیا سیمی کنڈکٹر چپ کا آغاز ہو جائے گا۔ بھارت کے انتخابی کمیشن کے مطابق بہار میں انتخابی فہرستوں پر نظر ثانی کے عمل میں اب تک تقریباً 95% رائے دہندگان کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ چھتیس گڑھ کے نارائن پور میں حفاظتی دستوں کے ساتھ مٹ بھیڑ میں 6 ماؤنواز مارے گئے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کیرلا میں کل تک شدید بارش سے متعلق الرٹ جاری کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔